सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोहे सवसाहूणम् मुनिसूवयदेशयरम् प्रणमीय मुनिसूवयम् जिनम् देवम् सङ्कममनोगमिनम् जहासुवं वर्णय सामो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री दर्शन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। 16 पुस्तक 16वीं जो मोक्षादि चतुर्दश अनुयोग द्वार है, उसमें अभी हम संक्रमण अनुयोग द्वार की चर्चा करते हुए पृष्ठ संख्या 373 पर आ गए। 373 यहाँ पदनिक्षेप की प्ररूपना चलेगी। कहते यहाँ नीचे का पेरेरा पदनिक्षेप की प्ररूपना स्थिति उदीर्णा संबंधी पदनिक्षेप के समान है। बहुत सारी बातें स्थिति उदीर्णा जैसे ही है। इसमें वृद्धि संक्रम की प्ररूपना की जाती है। वृद्धि यानी उत्कृष्ट वृद्धि कहाँ पर है, जघन्य वृद्धि कहाँ पर है, उसको कहेंगे वृद्धि की प्ररूपना। नहीं, पदनिक्षेप की बात एक लाइन में हो गई। जैसे स्थिति उदीर्णा में पदनिक्षेप है वैसा ही है ये वृद्धि संक्रम, ये और ये अलग प्ररूपना है। यानी वृद्धि का जो कहाँ ज्यादा से ज्यादा वृद्धि होती है उसकी बात है। हमने ये वृद्धि का सवाल कहाँ होता है, भुजाकार में। पहले कम परमाणु संक्रमित होते थे या ज्यादा, अभी यहाँ परमाणु की भी बात नहीं, प्रदेश संक्रमण की बात नहीं है, स्थिति संक्रमण की बात है। कम स्थितियों में से संक्रमण होता था, अब अधिक स्थितियों में होने लगेगा। तो कितना अधिक हुआ, वृद्धि कितनी हुई, उसको वृद्धि संक्रम कहते हैं। वृद्धि हुई उसको भुजाकार कहेंगे, और उस वृद्धि का प्रमाण कितना है उसको वृद्धि संक्रम में बताएंगे। क्या वो वृद्धि अधिक है क्या कम है, उत्कृष्ट है क्या जघन्य है, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट कितनी वृद्धि हो सकती है, जघन्य में जघन्य कहाँ होती है, कितनी होती है। तो यहाँ बताते हैं पांच ज्ञानावरण संबंधी असंख्यात गुणहानि के संक्रामक स्तोक है। हाँ, वृद्धि में हानि भी बताएंगे और वृद्धि भी बताएंगे। यानी असंख्यात गुणा हानि करके जहाँ संक्रामक होते हैं, यानी अल्पतर में लगाना, असंख्यात गुणा हानि जहाँ होती है। नहीं, वृद्धि की बात अभी नहीं, पहले हानि की ली है उन्होंने, हानि की ही ली है। पहले जितनी होती थी बाद में असंख्यात गुणा हीन होने लगी, तो हानि के संक्रामक शोक है। यानी उसमें भी उनको क्रम लगाना है ना, अल्प बहुत तो बताना है। यानी असंख्यात गुणा हानि जहाँ होती है, अल्पतर में लेना उसका। पहले कितने स्थितियों में से होते थे, उससे असंख्यात गुणाहीन यानी असंख्यात वे भाग निषेकों में से होंगे, तो ऐसे तो संक्रामक स्तोक है। संख्यात गुणहानि के संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, संख्यात भाग हानि के संक्रामक संख्यात गुणे हैं। अब यहाँ वृद्धि के, क्योंकि वृद्धि के जीव ज्यादा है ना, इसलिए पहले हानि वालों को लिया। अब संख्यात गुण वृद्धि के संक्रामक असंख्यात गुणे हैं। देखो, पहले असंख्यात गुणा हानि लिया, संख्यात गुणा हानि लिया, संख्यात भाग हानि लिया। असंख्यात भाग हानि को यहाँ नहीं लिया है, संख्यात गुण वृद्धि के लिए। फिर संख्यात भाग वृद्धि के संक्रामक संख्यात गुणे हैं, है बराबर करना। असंख्यात भाग वृद्धि के संक्रामक अनंत गुण हैं और अवस्थित संक्रामक असंख्यात गुण हैं। अब असंख्यात भाग हानि वहां नहीं लिया था, वह यहां पर लेते हैं। असंख्यात भाग हानि के संक्रामक संख्यात गुण हैं, यानी एक निषेक की भी हानि हो जाएगी तो हम कहेंगे ना असंख्यात भाग की हानि हुई। इसी प्रकार से नव दर्शनावरण साता वेदनीय और असाता वेदनीय के संबंध में कथन करना चाहिए। यानी अल्पतर में लेना ना उसमें। मेरे ख्याल से पहले अंतिम स्थिति कांडक के बाद जब आते हैं नीचे, स्थिति कांडक में इतने निषेकों की होता था, स्थिति कांडक होने के बाद कम हो गया ना, अल्पतर हो गया, वहां हो सकता है। यहाँ लिखा नहीं उसके स्वामी को, अभी हम 374 पे आए। इसी प्रकार सेकंड लाइन, शेष कर्मों के भी संबंध में कहना चाहिए। विशेष इतना है कि सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व और चार आयु कर्मों की प्ररूपणा में चार वृद्धियों और चार हानियों को कहना चाहिए। इस प्रकार स्थिति संक्रम समाप्त हुआ। चार वृद्धि और चार हानि, और इसमें नहीं असंख्यात भाग वृद्धि भी आया ना, असंख्यात गुणा वृद्धि कहाँ लिया? असंख्यात गुणा वृद्धि वाला नहीं लिया था हमने। देखो फिर पढ़ना पीछे वाला पेज, असंख्यात गुणा हानि लिया, संख्यात गुणा हानि लिया, संख्यात भाग हानि लिया, और असंख्यात भाग हानि वो लास्ट में रखा था, है ना? फिर वृद्धि में संख्यात गुणा वृद्धि लिया, संख्यात भाग वृद्धि लिया, असंख्यात भाग वृद्धि लिया, फिर अवस्थित लिए और असंख्यात भाग हानि लिया, असंख्यात गुणा वृद्धि भी नहीं ली थी, बराबर है ना? अवस्थित यानी पहले जितना है उतना ही दूसरे। हाँ उसमें तो चार की है, चार वृद्धि और चार हानि कहना चाहिए। वृद्धि जब बंध के काल में हम कह सकते हैं ना, यह संक्रम पहले थोड़े का होता था, बाद में अधिक का होगा, क्योंकि जब आयु का उदय शुरू हो जाता है तो क्रम से वो घटते ही चले जाएंगे ना स्थितियों के। स्थिति की बात चल रही है, स्थिति उदय यानी स्थिति संक्रम की ही बात चल रही है। संक्रम में अपकर्षण उत्कर्षण दोनों लेना है ना, तो जहां जो पॉसिबल है उसको ले सकते, आबाधा काल या बंधने के टाइम में उत्कर्षण होता है ना, वहां परमाणु में आवली बंध शुरू हुआ, बंध तो अंतर्मूर्त का है, पहले आवली में तो कुछ नहीं होगा, बाद में पहले समय में बंधे हुए जो परमाणु है उसमें से उत्कर्षण होता रहता है, जब तक वो अंतर्मूर्त काल तक बंध है। नहीं ऐसी बात नहीं है, उसमें थोड़ा अंतर्मूर्त तक उस अंतर्मूर्त तक जो निषेक, प्रत्येक निषेक की स्थिति अलग है ना, अलग अलग स्थिति। हाँ कल हम आया था एक समय अधिक बंधने वाली स्थिति, ऐसा भी आया था वो रेफरेंस कल, तो उसकी रेंज होगी ना जो कोई विशिष्ट, और उसमें भी जो निषेक रचना होती है, नीचे के निषेकों में से जितनी स्थिति बांधी है ऊपर चले जाते हैं। यानी हर एक परमाणु में स्थिति अलग अलग है, जो पहला निषेक है उसके परमाणु ऊपर के निषेक में चले जाएंगे, उत्कर्षण होगा, तो उसको हम स्थिति संक्रमण कहेंगे। उसको भी लेना यहाँ संक्रमण में। तो स्थिति संक्रमण में हमने देखा था उत्कर्षण, अपकर्षण और पर प्रकृति रूप होना, ये सबको संक्रमण कहा। आयु में तो पर प्रकृति रूप होता नहीं है, तो उत्कर्षण और अपकर्षण जहां जो पॉसिबल है उसको ले लेना। अब ये असंख्यात गुणा वाली जो बात है ना, ये असंख्यात गुणाहीन वाली कदली घात में होगा, क्योंकि पहले इतने में से उदीर्णा हो रही थी, अपकर्षण हो रहा था, अभी एकदम से कदली घास के बाद एकदम हो गए, इसलिए चारों प्रकार की वृद्धि हानि बताई वहां पर। ये चारों आयु में विशेष इतना है कि चार आयु कर्मों की प्रवृत्ति चारों वृद्धि और चारों हानियों को कहना चाहिए। देवायु और नरकायु में ये असंख्यात गुणा वाली जो है ये संक्लेश के परिणाम में जो कुछ बढ़ता होगा उसके कारण होगा, वह उदीर्णा का प्रमाण जो बढ़ता है। हाँ, हमने देखा था ना उसका जो संक्लेश में अधिक उदीर्णा होती है वगैरह, परंतु स्थितियों के प्रमाण की बात चल रही, वहां तो प्रदेश में आएगा, वो बात प्रदेश संक्रमण में आएगा। यहाँ स्थितियां कैसे घटती या बढ़ती है उसकी बात, तो बढ़ने वाली तो उत्कर्षण में ही लेना। हाँ, स्थिति बदल गई ना, ने बंधने के बाद भी तैतीस सागर वाला वह अंतिम निषेक है, उसके परमाणु एकदम नीचे आ गए ने, मगर टोटल कितने स्थितियों में से संक्रमण होता है इसको लेना है ना। हाँ, कौन से स्थिति में से संक्रमित होकर कहाँ आए हैं, उतने स्थितियों की संख्या को लेना है। जैसे हमने स्थिति उदीर्णा में लिया था ना, वैसा ही यहाँ पर है। अब ये तो स्थिति संबंधी बात यहाँ पूर्ण होती, अब अनुभाग संक्रमण की प्ररूपणा चलेगी, यानी अनुभाग चेंज हो जाना, उसको भी अनुभाग घटना यानी अपकर्षण, अनुभाग बढ़ना उत्कर्षण, या पर प्रकृति रूप होकर वो अनुभाग का जो कुछ चेंज हो जाता है। अनुभाग संक्रम की प्ररूपणा में पहले कर्मों के आदि स्पर्धकों का निर्देश ज्ञात कराने योग्य है। चार ज्ञानावरण, तीन दर्शनावरण, चार संज्वलन, नौ नौकशाए और पांच अंतराय, ये देशघाती कर्म है। क्या कहते हैं, पांच ज्ञानावरण में से चार ज्ञानावरण को देशघाती कहा, तो सर्वघाती कौन है, केवल ज्ञानावरण। तीन दर्शनावरण है वो देशघाती है, पांच निद्रा और केवल दर्शनावरण ये सर्वघाती है। चार संज्वलन ये सब के सब देशघाती है, और अन्य बारह कषाय है वो सर्वघाती है, मिथ्या तो भी सर्वघाती है। नौ नौ कषाय है वे सभी देशघाती है, और पांच अंतराय ये भी देशघाती है। साता वेदनीय, असाता वेदनीय, देखो हमने अनुभाग की अपेक्षा स्पर्धकों को नाम दिए थे। कौन से होते हैं, जघन्य से उत्कृष्ट की ओर क्या क्या होते हैं, लता भाग वाले, दारू भाग वाले, अस्थि और शैल। हाँ, थोड़ा रिवीजन करेंगे ना। तो ये जो यहाँ जो लिखे हैं, देशघाती कर्म या देशघाती प्रकृति, स्पर्धक होते हैं सर्वघाती और देशघाती, और प्रकृतियां भी होती है सर्वघाती और देशघाती। तो जो ऊपर से लेंगे शैल, अस्थि और दारू का अनंत बहुभाग, ये सर्वघाती है, और नीचे अनंतवा भाग दारू का और पूर्ण सभी लता वाले जो है वो देशघाती स्पर्धक है। अब प्रकृतियों की बात करेंगे, जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं उनके सभी स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं। जो देशघाती प्रकृतियां हैं उनमें सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं, देशघाती भी स्पर्धक होते हैं। सर्वघाती का उदय हो जावे तो सर्वघाती जैसा उसका काम होता है। जैसे मति ज्ञानावरण है, उसका सर्वघाती स्पर्धक है अंदर, परंतु उदय कभी सर्वघाती का होगा ही नहीं, हमेशा देशघाती रूप से ही उदय होगा। जिसको हम क्षोभशम कहते हैं उसका चलता रहे, तो अवधि ज्ञानावरण भी देशघाती प्रकृति है, परंतु अभी हमें अवधि ज्ञान नहीं है। इसका अर्थ क्या है? सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, और जिसके अवधि ज्ञान चल रहा है उसको देशघाती का उदय है। ये स्पर्धक और प्रकृति में अंतर है, यहां प्रकृति की बात कर रहे हैं। ये समझ में है ना, देशघाती प्रकृतियां कौन कौन सी है? नहीं, सर्वघाती में लता नारू होता ही नहीं है। सर्वघाती के सभी स्पर्धक सर्वघाती ही है, यानी उसमें शैल अस्य और दारू इतने ही हो गए। मिथ्यात्व में तो ये तीन है ही है, सम्यक मिथ्यात्व में भी वो दारू वाला जो है ना, मिथ्यात्व का नीचे का पोर्शन, उससे थोड़ा नीचे आता है, परंतु वो अनंत विभाग में नहीं आता, देशघाती स्पर्धक में नहीं चला जाता, उसके भी सर्वघाती ही रहते हैं। भले मिथ्यात्व से अनंत गुणाहीन होकर आता है, फिर भी सम्यक मिथ्यात्व भी सर्वघाती प्रकृति है। अब उसकी बात यहाँ नहीं उठाई है, मिथ्यात्व और इसको नहीं लिया है यहाँ पर। देखो, मिथ्यात्व का अनुभाग अत्यंत हीन हो जाता है और सम्यक प्रकृति रूप हो जाता है, वो लता जैसे हो जाते हैं। हाँ, सम्यक प्रकृति में सर्वघाती है ही नहीं, यदि हो जाए तो सम्यक्त्व का घात कर जाए। देशघाती है ना, इसका उदय भी होता रहे और सम्यक्त्व भी बना रहे, जिसको हम वेदक सम्यक्त्व कहते हैं। अब हमने ये तो लिस्ट बताई देशघाती कर्म की, कहते साता वेदनीय असाता वेदनीय चार आयु समस्त नाम प्रकृतियां उच्च गोत्र नीच गोत्र ये कर्म प्रकृतियां अघाती है। अब इसमें से कितनी देशघाती कितनी सर्वघाती है? हाँ मंदावी, इसमें से देशघाती कौन कौन सी है, सर्वघाती कौन कौन सी है, साता वेदनीय क्या है मालूम नहीं, आगे क्या लिखा है, ये क्या है लिखा है, अघाती कहाँ, ये सर्वघाती और देशघाती ये घाती के भेद है। ये तो अघाती है ना, ना सर्वघात करता है ना देशघात घात करता ही नहीं है, इसलिए इसको अघाती कहा। इन अघाती कर्मों के तथा पूर्वोक्त देशघाती कर्मों के आदि स्पर्धक सदृश होते हैं। क्या कहना चाहते हैं? सदृश होते, अरे यहाँ उसका नाम तो लता है और यहाँ क्या क्या नाम है, हाँ उसमें भी दो है ना, शुभ और अशुभ, तो शुभ प्रकृतियों के नाम क्या क्या है, गुड़ खांड शर्करा और अमृत, हाँ, और दूसरे जो अप्रशस्त है उसके विष ऊपर का है, नीचे नीचे से है, नीम कांजीर विष और हलाहल, तो ये कहते दोनों समान है, समान है ना, अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या की अपेक्षा समान है, ऐसा लेना उसमें। उसके हाँ उसके कितने डिग्री है अविभाग प्रति, जघन्य स्पर्धक लेना, मिनिमम पॉसिबल अविभाग प्रतिच्छेद, उसको जघन्य अनुभाग कितना है, अपना अपना अनुभाग। आदि स्पर्धक है ना, पहला स्पर्धक नीचे का, नीचे का आदि यानी नीचे का पहला स्पर्धक, जघन्य में जघन्य स्पर्धक जिसको कहते ना, जघन्य में जघन्य पॉसिबल कितना है उसमें, ये आदि स्पर्धक। इसमें भी वो पूर्व स्पर्धक की बात है, अपूर्व स्पर्धक की बात नहीं है, नहीं समझे? अपूर्व स्पर्धक जब आठवें गुणस्थान में हो जाते हैं उसकी बात यहाँ नहीं है। लता के समान नहीं, लता में भी अनंत स्पर्धक होते हैं, उसका पहला स्पर्धक, नीचे का पहला स्पर्धक, मिनिमम पॉसिबल अनुभाग वाला स्पर्धक, तो सदृश होते हैं। आदि स्पर्धक यानी जघन्य स्पर्धक कहो, पहला स्पर्धक जघन्य या प्रथम स्पर्धक। अब कहते हैं केवल ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण और 12 कषाय, हमने इसके नाम देखे थे। छह दर्शनावरण कौन से? निद्रा और 5 प्रकार की निद्रा और केवल दर्शनावरण, ये सर्वघाती कर्म है, इनके आदि स्पर्धक परस्पर में सदृश है। परस्पर में सदृश है, जहां वो हमने देखे ना दारू के अनंत भाग करना, उसमें अनंतवा भाग नीचे का छोड़ देना और वो छोड़कर ऊपर के जो है वो उसका आदि स्पर्धक कहलाएगा, सर्वघाती का आदि स्पर्धक। वो आदि स्पर्धक के साथ मिथ्यात्व को नहीं लेना, मिथ्यात्व का आदि स्पर्धक और थोड़ा ऊपर होगा। हाँ, आगे लिखा है क्या? नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। देखो, ये सर्वघाती कर्म है और इनके आदि स्पर्धक परस्पर में सदृश है, यानी उनके जो जहां से शुरुआत होती है, उनके जहां से हम उसको सर्वघाती कहते हैं, वो सबके समान है। सर्वघाती कर्मों के दारू समान स्पर्धक, देशघाती कर्मों के आदि स्पर्धकों की अपेक्षा अनंत गुणे हैं। हाँ, स्पर्धक अनंत गुणे हैं, एक एक स्पर्धक में तो अनंत वर्गणा होती है और एक एक स्पर्धक में फिर पहली वर्गणा दूसरी वर्गणा कहलाएंगे, उसकी तो बात नहीं, हमें पूरा एक स्पर्धक रूप ले लिया उसका। ये स्पर्धक पहले निशेक हम आड़ी लाइन में बताते, स्पर्धक तो हम ऐसे गोले गोले बताएंगे, ऐसे अनंत स्पर्धक है। अब यहां से यहां तक लता वाले हैं और इसके ऊपर दारू वाले हैं और यहां से सर्वघाती की लिमिट, ये उसका सर्वघाती का आदि स्पर्धक है। ये सर्वघाती का जो आदि स्पर्धक कहो, ये यहाँ तो सर्वघाती कर्मों के दारू समान स्पर्धक, ये सर्वघाती के दारू समान स्पर्धक जो है वो देशघाती के आदि स्पर्धकों से कितने गुना है? अनंत गुना। देखो, एक स्पर्धक के पहली वर्गणा से दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा में अविभाग प्रतिच्छेद 2 गुना होता है, तीसरे स्पर्धक में 3 गुना, चौथे में हम मान लेते यहाँ 100 है। पहले स्पर्धक के पहली वर्गणा में, पहली वर्गणा यानी जघन्य वर्गणा में 100 अभिभाग प्रतिच्छेद होगा, तो जहाँ से 200 होता है वहाँ से दूसरा स्पर्धक 300 से, तीसरा स्पर्धक 400 से, चौथा स्पर्धक, ऐसे करते करते लता में ही अनंत होते हैं और ये दारू वाला तो वो भी अनंत गुना हो जाता है। ये बात ख्याल में आई नहीं यहाँ पर? हाँ, अब आगे सम्यक्त्व प्रकृति का, हाँ, सर्वघाती का दारू समान स्पर्धक। हाँ, यहाँ जहाँ से सर्वघाती का आदि स्पर्धक कहूंगे, क्योंकि सर्वघाती में दारू समान है, अस्थि समान है, शैल समान है, वो शैल वाले अनंत गुणा हो गए तो हो गए ही हो गए, परंतु सर्वघाती का जो आदि स्पर्धक है वो देशघाती के आदि स्पर्धक से भी अनंत गुणे हैं। अब कहते हैं सम्यक तो प्रकृति का आदि स्पर्धक देशघातियों के आदि स्पर्धक के सदृश है, हमने देखा था। इसमें से सर्वघाती का आदि है ना, उसके ऊपर जाकर ये सर्वघाती का आदि यहाँ पर था, उसके ऊपर जाकर यह मिथ्यात्व के हो गए और ये इसमें ये सम्यक मिथ्यात्व के हो गए। परंतु सम्यक प्रकृति कहाँ से है? लता के नीचे, यानी अन्य जो कर्मों के जो लता वाले पहला स्पर्धक है वैसा ही यहाँ पर सम्यक प्रकृति का हो जाता है आदि स्पर्धक। उसमें भी अनंत स्पर्धक है ना लता भाग वाले, सम्यक प्रकृति के भी अनुभाग में अंतर होगा कि नहीं होगा? हाँ, क्योंकि उसमें अनंत स्पर्धक है। जैसे हम आवरण में देखते, जहाँ आवरण ज्यादा है वहां ज्ञानहीन है, अब सम्यक प्रकृति के भी अधिक अनुभाग वाले स्पर्धक हो गए तो वो जो दोष हम देखते ना वो अधिक हो गए चलमल का। हाँ, और अत्यंत मंद नहीं के बराबर हो गए, क्योंकि हम जहां देखते हैं अभी सम्यक प्रकृति का क्षय हो रहा है, जैसे स्थिति घटती है अनुभाग भी वहां घटता चला जाता है, जहां विशुद्धि है वहां उसके भी अनुभाग घटते हैं ना। तो यहां कहते हैं वो इसके अन्य देशघाती के आदि स्पर्धक जैसा है, यानी उसके अनुभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा हम समानता कह रहे हैं। तीन सौ चौहत्तर है। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कौन कौन से देशघाती कर्म है उसको बता दिया। पांच ज्ञानावरण में चार ज्ञानावरण है, तीन दर्शनावरण है, फिर चार संज्वलन है, नौ नौ कषाय है और पांच अंतराय, ये देशघाती प्रकृतियां हैं। फिर जो अघाती कर्म है, साता असाता है, चार आयु है, नाम कर्म की सभी प्रकृतियां और उच्च नीच गोत्र, ये अघाती है। अघाती में देशघाती सर्वघाती नहीं होते। यहां बात ये बताने चाहते हैं कि अघाती हो या घाती हो, उसका जो पहला स्पर्धक है जघन्य में जघन्य स्पर्धक, उसके अनुभाग ये सदृश है, ऐसा इतना ही कहा। तो सदृशता किस अपेक्षा से चल रही है? अनुभाग की अपेक्षा, यानी उसमें अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या समान होगी। अब कहते जो सर्वघाती का पहला स्पर्धक है वो दारू से ऊपर हो जाते हैं, और जो देशघाती का पहला स्पर्धक है तो देशघाती के पहले स्पर्धक से, सर्वघाती का जो दारू वाला स्पर्धक है वो अनंत गुणा है उसका अविभाग प्रतिच्छेद, ये अनुभाग उसका अनंत गुणा है। अन्य जो देशघाती के पहला स्पर्धक है और सम्यक तो प्रकृति का जो पहला स्पर्धक है उसको आदि स्पर्धक कहा, वे समान है, सदृश है। यानी लता वाला पहला स्पर्धक, अब नहीं आया, देखो देखो अन्य करने कौन से ज्ञानावरण है, चार, अभी मति ज्ञानावरण का है। मति ज्ञानावरण का जघन्य में जघन्य स्पर्धक और सम्यक प्रकृति का जघन्य में जघन्य स्पर्धक, अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा उनकी समानता है। का आदि स्पर्धक देशघातियों के आदि स्पर्धक के सदृश है ना? सम्यक प्रकृति देशघाती ही है। अभी हमने जो लिस्ट पढ़ी, हाँ, क्योंकि सम्यक प्रकृति बाद में तैयार हुई ना, इसलिए उसके साथ उसको नहीं लिया था। सम्यक प्रकृति वहां मिथ्यात्व को भी नहीं लिया था, सम्यक मिथ्यात्व को भी नहीं था, सम्यक प्रकृति को भी नहीं लिया था। अन्य की बात ऊपर आ चुकी। अब कहते हैं सम्यक तो प्रकृति का आदि स्पर्धक देशघातियों के आदि स्पर्धक के समान है। उससे लेकर सम्यक्त्व के स्पर्धक देशघाती और अघाती कर्मों के स्पर्धकों के साथ निरंतर जाकर दारू समान देशघाती में समाप्त होते हैं। क्या कहते हैं? दारू समान देशघाती है ने, दारू के जो अनंत भाग किए उसमें जो अनंतवा भाग है जिसको हम देशघाती की कहते हैं। सर्वघाती स्पर्धक कहां से शुरू होते हैं? दारू का अनंत बहुभाग, अस्थि वाले और शैल वाले। दारू का नीचे का जो अनंत वा भाग है वो देशघाती स्पर्धक है। तो यहाँ क्या कहा? सम्यक प्रकृति का पहला स्पर्धक यानी आदि स्पर्धक और अन्य देशघाती प्रकृतियों का, हम अभी मति ज्ञानावरण को लेते, मति ज्ञानावरण का आदि स्पर्धक, ये दोनों सदृश है। हमने तो देखा था आघाती के भी आदि स्पर्धक सदृश होते हैं, साता असाता सबको लेने उसके, बात सही है ना? अब कहते हैं यहाँ क्या कहा, उससे लेकर यानी उस आदि स्पर्धक से लेकर सम्यक्त्व के स्पर्धक यानी सम्यक प्रकृति के स्पर्धक देशघाती और अघाती कर्मों के स्पर्धकों के साथ निरंतर जाकर, यानी तीनों के स्पर्धक निरंतर ऐसे बढ़ते बढ़ते दारू समान देशघाती में समाप्त होते हैं। ये जो हमने दारू का नीचे का अनंतवा भाग है वहां सबके स्पर्धक एक साथ एक जैसे समान होते हैं, वहां तक सब में समान हो। हाँ, नीचे का भी स्पर्धक समान है और दारू के, यानी एक एक स्पर्धक समान ही है ना, क्योंकि दूसरा स्पर्धक हम उसी को कहते जो दो गुना है, तीसरा स्पर्धक उसी को कहेंगे जो तीन गुना है। तो ये जो दारू वाले जो है वहां तक तो समानता है। सम्यक्त्व के उत्कृष्ट स्पर्धक की अपेक्षा सम्यक मिथ्यात्व का हाँ है ही। हाँ वो एकदम टॉप में नहीं जाएंगे, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व के उससे भी ऊपर अनंत गुणे चले जाएंगे। दारू समान देशघाती में समाप्त होते इतना ही लिया है। अभी दारू समान में, दारू समान देशघाती कौन से? अनंत विभाग वाले ही है। अघाती के वहां तक के जो अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा इतने गुना हो गए, हम इतना कहेंगे ना, पूरा पढ़ेंगे ख्याल में आएगा। देखो वो सर्वघाती है, वो वैसा नहीं कहा है, क्योंकि वो तो थोड़ा ही ज्यादा ऊपर होगा ना। उसमें कितने एक एक स्पर्धक में, जैसे हमने शुरू से जितना शुरू किया था, 100-100 उसके डिफरेंस से हो गए ना, 100 का 200 हो गया था। ऑफ कोर्स पहले में अनंत होता है तो दूसरे में 200 हुआ तो भी वो अनंत गुना ही कहेंगे हम, फिर भी ये दो गुना तीन गुना चार गुना जो कह रहे। अब यहाँ जहाँ सम्यक मिथ्या सॉरी सम्यक्त्व का खत्म हुआ, सम्यक्त्व के अंतिम स्पर्धक से सम्यक मिथ्यात्व का जो स्पर्धक है वो अनंत गुना है। 375 की सेकंड लाइन फिर पढ़ते देखो। सम्यक्त्व के उत्कृष्ट स्पर्धक की अपेक्षा सम्यक मिथ्यात्व का प्रथम स्पर्धक अनंत गुना है, क्योंकि वह केवल ज्ञानावरण के आदि स्पर्धक के समान है। इसका अर्थ क्या है? वो हमने देखा था ना, दारू का अनंत बहुभाग छोड़कर सॉरी अनंत वा भाग छोड़कर बहुभाग जहां से जो हमने देखा था ना, यहां से सर्वघाती का आदि स्पर्धक शुरू होता है, वैसा सम्यक मिथ्यात्व का आदि स्पर्धक है, फिर भी उससे वो अनंत गुना ही कहलाएगा। बीच में जो जहां तक ये सर्वघाती है, यहाँ ऊपर की सर्वघाती है और नीचे का देशघाती है, इससे वो वाला अनंत गुणा हो जाएगा। हाँ दे, क्योंकि नहीं समझे, मिथ्यात्व भी सर्वघाती है, परंतु मिथ्यात्व का नीचे वाला स्पर्धक नहीं, मिथ्यात्व का नीचे वाला स्पर्धक अन्य सर्वघाती के समान नहीं है। सम्यक मिथ्यात्व का नीचे वाला अन्य सर्वघाती के समान है, केवल ज्ञानावरण के समान। कहा ना, केवल ज्ञानावरण का स्पर्धक कहाँ से शुरू हुआ? जो लोअर लिमिट है, अभी हम फिर यहाँ से देखते हैं। हाँ सर्वघाती का पहला स्पर्धक, हाँ देखो ये जो ये नीचे लता वाले हैं, ये यहाँ से नारू वाले शुरू हुए, परंतु इसमें नीचे वाले जो है वो सर्वघाती है, ये सॉरी देशघाती है, और ऊपर है वो सर्वघाती है। तो ये सर्वघाती की जो लोअर लिमिट है, जो आदि स्पर्धक है केवल ज्ञानावरण का, सम्यक मिथ्यात्व का, वो एक लेवल पर आते हैं। मिथ्या अविभाग की अपेक्षा, हाँ अब मिथ्यात्व का उसके ऊपर अनंत गुणा चला जाएगा। अभी तो पढ़ा ना हमने, देखो सेकंड लाइन, सम्यक्त्व के उत्कृष्ट स्पर्धक की अपेक्षा सम्यक मिथ्यात्व का प्रथम स्पर्धक अनंत गुणा है, क्योंकि वह केवल ज्ञानावरण के आदि स्पर्धक के समान है। आदि कहाँ है ना उसका, जहां सर्वघाती शुरू हो जाते हैं, सभी के सभी सर्वघाती वहीं से शुरू होते हैं। देखो क्या कहा है, फिर पहले पृष्ठ पर 374 में आना, नीचे से तीसरी लाइन चौथी लाइन लेना। केवल ज्ञानावरण 6 दर्शनावरण 12 कषाय ये सर्वघाती है, इनके आदि स्पर्धक परस्पर में सदृश है। जहां परस्पर में सदृश है वहीं पर सम्यक मिथ्यात्व का भी आदि स्पर्धक लेना, बराबर है ना? उसके आगे सम्यक मिथ्यात्व के अनंत स्पर्धक निरंतर जाकर, फिर पहले 375 पर आना ना, अभी रेफरेंस तो देख लिया हमने, अभी समझ लो हाँ, 375 की तीसरी लाइन, उसके आगे ने आदि स्पर्धक के आगे, अभी हमको नीचे वाला स्पर्धक बता दिया, आदि ने पहला नीचे वाला सम्यक मिथ्यात्व का सबसे जघन्य स्पर्धक, जघन्य अनुभाग वाला बता दिया, तो सम्यक मिथ्यात्व में भी अनंत स्पर्धक है, तो निरंतर जाकर यानी बीच में कोई गैप छूटे भी ना, एक 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 यानी जो पहला है उससे दो गुना तीन गुना जो कुछ है वहां बढ़ते बढ़ते दारु समान स्पर्धकों के अनंत वे भाग में ही समाप्त हो जाते हैं। उसके आगे का अनंतर स्पर्धक मिथ्यात्व का जघन्य स्पर्धक होता है, आगे का इमीडिएट नेक्स्ट जो स्पर्धक है वो मिथ्यात्व का है। वह सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट दारु समान स्पर्धक की अपेक्षा अनंत गुना होकर, वो भले इमीडिएट नेक्स्ट है स्पर्धक, फिर भी उसमें अनुभाग अनंत गुना है, घाती कर्मों के आदि स्पर्धकों के समान नहीं होता, ये सर्वघाती होना चाहिए था, तदो उपरी अनंत फद्यम इच्छत तस्य जघन्य फद्यम उदितम च सम्मा इच्छत तस्य उत्कृष्ट दारु समान फद्यादो अनंत गुणम घाती कर्माणम आदि फद्ये ही असमानम। घाती कर्मों के यानी सर्वघाती के चाहिए था, क्यों? क्योंकि सर्वघाती जो है ना केवल ज्ञानावरण का आदि स्पर्धक सम्यक मिथ्यात्व के आदि स्पर्धक के समान था, और उसके ऊपर अनंत गुणा हो जाता है ये, इसलिए मिथ्यात्व का जो आदि स्पर्धक है वो अन्य सर्वघाती के समान नहीं है। ये पेंसिल से लिखना वो अपने रेफरेंस के लिए, यानी सर्वघाती कर्मों के आदि स्पर्धकों के समान नहीं होता। यहाँ अप्रश्न से उपशम कहाँ याद आ गए? हाँ अच्छा हाँ हाँ उदय ही जहाँ उदय है उस रूप से होगा ही नहीं, उसका उदय अन्य रूप से होगा। जैसे चौथे में अप्रत्याख्यानावरण का उदय है, पांचवे में अप्रत्याख्यानावरण का उदय मिटकर वो प्रत्याख्यान संज्वलन रूप से उदय में आएगा। उस रूप से नहीं आएगा, हाँ प्रत्याख्यान रूप से आएगा, तभी तो उसको हम कहेंगे ना, उसका अप्रश्न सूक्ष्म तो तभी कहलाएगा। मंद अनुभाग होकर उदय में आएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको थोड़े हम उदय ही कहेंगे ना उसका, क्योंकि वो सर्वघाती है। बारह कषाय जो है वो सर्वघाती है, कितना भी मंद होकर भी उदय में आए तो सर्वघाती ही रहेंगे, नहीं ख्याल में आए? अभी हम देखते हैं अनंतानुबंधी का कितना भी मंद उदय होकर उदय में आए तो सम्यक तो होने देगा कि नहीं देगा। वैसे चौथे में अप्रत्याख्यानावरण कितना भी मंद हो, मान लेते उसका वो सर्वघाती है ना, उसका मिनिमम उस पहला स्पर्धक उदय में आवे, आदि स्पर्धक, तो भी क्या कहलाएगा वो सर्वघाती है ना, उसका गुणस्थान थोड़ा बदलेगा। हाँ भले वो ऐसा कब होगा अनुभाग मिनिमम, ऊपर के गुणस्थान में जा रहा है अभी, उसकी विशुद्धि बढ़ रही है, परंतु है तो उसका गुणस्थान वही। अनंत गुणाहीन नहीं, क्योंकि ये प्रकृति ही अलग बदल, प्रकृति ही बदल जाती है, इसीलिए उन प्रकृतियों को अलग नाम दिया है, उनको मिथ्यात्व प्रकृति नहीं कहते, दर्शन मोह कहेंगे, मिथ्या तो नहीं कहेंगे। हाँ अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण जो है अनंतानुबंधी है, उनके जो पहले स्पर्धक है, बारह कषायों को लिया था ना यहाँ पर, ये चार संज्वलन को देश घाती लिया, बाकी बारह जो है बारह कषायों में सर्वघाती में लिया, सभी के आदि स्पर्धक समान थे, और वैसा ही आदि स्पर्धक सम्यक मिथ्यात्व का है। फिर सम्यक मिथ्यात्व के अनंत स्पर्धकों के बाद उसके ऊपर का है वो मिथ्यात्व का है, भले एक स्पर्धक ऊपर जाते तो भी उसका अनुभाग अनंत गुणा हो जाता है। इसलिए हाँ, केवल ज्ञानावरण और सम्यक मिथ्यात्व, उससे अनंत स्पर्धक के बाद मिथ्यात्व का स्पर्धक का नंबर आता है, इसलिए वो अनंत नेक्स्ट। परंतु पहले अनंत स्पर्धक बीत जाने के बाद नेक्स्ट आया, वही तो मैंने बताया। इमीडिएट नेक्स्ट होकर भी उसके उत्कृष्ट स्पर्धक से भी मिथ्यात्व का जघन्य स्पर्धक अनंत गुणा है। स्पर्धक की बात है ना, एक एक स्पर्धक में वर्गणाएं भी अनंत हो जाती है। इस प्रकार सब कर्मों के ही आदि स्पर्धकों की प्ररूपणा की गई है, यानी सबके आदि स्पर्धक बताए। अभी हम थोड़ा यह फुट नोट में कुछ है क्या देखते हैं, मैंने पढ़ा नहीं है वैसे। ऊपर जो जो साइंस है उसको देखेंगे, एक गमणित जे और गमणित जो, उसमें फर्क है, कोई बात नहीं। प्राकृत में जो दूसरे साइन है किलवर जैसे, ये जो देशघाती की संख्या उसमें प्रकृतियों की लिस्ट बताई थी, उसको नीचे पढ़ते पहली लाइन में अंत में, मति शुद्ध अवधि मन पर्य ज्ञानावरण, वहां तो केवल चार ज्ञानावरण इतना ही लिखा था। अब यहाँ यानी वो तो एक एक प्रकृति का नाम लिखते हैं, यानी मति शुद्ध अवधि, मैं फुट नोट में देख रही हूँ 374 के पेज में, फिर पढ़ती हूँ ये फर्स्ट लाइन में अंत में, मति शुद्ध अवधि मन परे ज्ञानावरण। फिर हमने देखे थे कि हाँ चक्षु दर्शनावरण तीन लिखे थे, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शनावरण, श के ऊपर रफार कर दो अभी, संज्वलन चतुष्टय नव नौ कषाय अंतराय पंचक, यानी पांच अंतराय लक्षणानाम पंचविंशति संख्यानाम देशघाती प्रकृतिनाम, क्या कहते हैं ये जो 25 संख्या वाले देशघाती प्रकृतियां हैं उसकी टोटल कर दी उन्होंने, देशघातीनी रस स्पर्धकानि भवन्ति, उनके जो स्पर्धक है रस स्पर्धक है ना, अनुभाग के स्पर्धक है वो देशघाती होते हैं। ऊपर तो वो देशघाती प्रकृतियां इतना ही बताया था, यहाँ क्या कहते हैं उनके स्पर्धक है वो देशघाती स्पर्धक होते हैं, उनमें उसके होते हैं। स्वस्य ज्ञानदेर गुणस्य देशम एक देशम मति ज्ञानादि लक्षण घातयन्ति इति एवं शीलानी देश घातयन्ति। ये देशघाती किसको कहते हैं कि अपने अपने जो ज्ञानादि गुण हैं, ज्ञानदे का ज्ञानादेर गुणस्य ज्ञानादि चाहिए, ज्ञानादि गुणों के देश और एक देश मति ज्ञानादि लक्षण घातयन्ति, यानी अपने अपने हम कहते ना प्रतिपक्षी का घात करते हैं, एक देश घात करता है उसको देशघाती कहते हैं। अब जो सेकंड साइन जो लिखी है, केवल ज्ञानावरण छ दर्शनावरण बारस कषाय सर्वघाती कम्मानि, नहीं बीच में अघाती का भी लिस्ट थी ना, ये सबको इकट्ठा लिया उन्होंने। अब पढ़ते हैं जो स्क्वेयर है ना वहां से पढ़ेंगे। वेदनीय आयुर नाम गोत्राणाम संबंधिन एकादशोत्तर प्रकृति शतस्य अघातिनो रस स्पर्धकानि अघातीनि वेदितव्यानि। ये जो अघाती प्रकृतियों के जो अनुभाग स्पर्धक है वो तो अघाती है, केवलम विद्यमान सर्वघाती रस स्पर्धक संबंधात तानि अपि सर्वघातीनी भवन्ति, यानी मात्र विद्यमान यानी जो उदय में आते हैं सर्वघाती रस स्पर्धक संबंधी वो सभी सर्वघाती होते हैं। यथा इह लोके स्वयं अचौराणाम अपि चौर संबंधात चौरता क्या कहते हैं ये जो ऊपर के जो बताए ना वेदनीय वेदनीय वगैरह, हाँ तो कहते हैं सर्वघाती के रस स्पर्धक के संबंध से इनको भी सर्वघाती कहते हैं। जैसे लौकिक में स्वयं चोर नहीं है, फिर भी चोर के संबंध से उसके चौरता कहने में आती है। उत्तम च जानन विषो घायित तणमी ताणम पी सर्वघाई रसो, यानी जिसको जिसका विषय घाती नहीं है उसको भी सर्वघाती रूप से रस होता है। जाई घाईस गासेन चोरया वेह चोराणम, जो अभी बताए वही बात है। वेदनीय को भी, हाँ उसका भी रस स्पर्धक सर्वघाती के संबंध से सर्वघाती रूप से पाया जाता है। अब उसकी तो चर्चा नहीं करेंगे ज्यादा, अभी हम नीचे पढ़ते। केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरणादि दशरुणाद्य द्वादश कषाय निद्रा पंचक मिथ्यात्व लक्षणानाम विंशति प्रकृतिनाम रस स्पर्धकानी सर्वघातिनी, ये 20 प्रकृतियां सर्वघाती है। ऊपर 25 देखे थे देशघाती और ये 20 सर्वघाती, मिलकर कितनी हुई 45, और घाती कर्म टोटल कितने हैं 47। वो जो दो है उसको यहाँ नहीं लिया अभी, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व को, उसको छोड़कर ये हो गई ना अभी। तो ये जो 20 प्रकृति है वो सर्वघाती है। सर्वम स्वघात्यम केवल ज्ञानादि लक्षणम गुणम घातयंती इति सर्वघातानी, यानी वो संपूर्ण केवल ज्ञानादि लक्षण जो गुण है उसका संपूर्ण घात करते हैं, इसलिए उसको सर्वघाती कहते हैं। एक यहाँ उदाहरण के तौर पर लिया है, बाकी एक एक के साथ लगा लिया, यानी अपने अपने प्रतिपक्ष गुण का संपूर्ण घात करते हैं। तानिच ताम्र भाजनवत निश्छिद्राणी घृतवत स्निग्धानी द्राक्षावत तनु प्रदेशोपचितानी स्फटिकाभ्रवत स्फटिकाभ्रहारवत च अतीव निर्मलानी। उक्तम च जो घायै सविषयम सयलम सो हो सौवघायिरसो सो निच्छिड्डो निद्धो तनुओ फलिहब्भर विमलो। क्या कहते हैं उसमें भी अभी ये भेद किए उन्होंने, यानी जो क्या कहता अपने विषय का संपूर्ण घात करते हैं वो सर्वघाती है। अभी वो कैसे कैसे हैं उसमें भी ये भेद किए। पहले नाम पहले बार सुना, ताम्र भाजनमत निश्छिद्राणी, निच्छिड्डो कहा था नीचे उसको, ये ताम्र के ताम्रे ने तांबे समझते हैं ना कॉपर, हाँ ताम्र भाजन ने उसका बर्तन ना उसके साथ छिद्र बिना के। घृतवत स्निग्धानी, घृत के समान घी घी के समान स्निग्ध होते हैं। द्राक्षावत तनु प्रदेशोपचितानी निद्धो तनु, यानी तनु प्रदेश उपचितानी, द्राक्ष के समान तनु प्रदेश से उपचित उपचित होते हैं चिपटे हुए चिपके हुए ऐसे उपचित कहते हैं ना, संचित कहते हैं, संचित इकट्ठे होते हैं उसको हम उपचित कहते हैं। स्फटिकाभ्र हारवत च अतीव निर्मलानी, और स्फटिक अभ्रहार के समान अत्यंत निर्मल होते हैं। हाँ ये उसके कोई जो विशेषताएं बताई। हाँ स्वयं निर्मल है दूसरे को घात कर रहे हैं। हाँ अनुभाग में होता है ना, अनुभाग में फर्क होगा क्योंकि उसके भी अनंत आनंद स्पर्धक है ना, कितने दारू से लेकर ऊपर सभी सर्वघाती ही है ना, उसमें भी होगा। हाँ ये बात आने वाली है, अभी जगन्य उदय कहाँ होगा क्या है, अनुभाग संक्रम में तो वो बात आएगी ना अभी। हाँ तो ये समझ में है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी आज आसान है ना थोड़ा। हाँ, इंटरेस्टिंग है अर्थपद। अभी 375 पर आ गए। नीचे का पढ़ना है क्या? देखो नीचे के फुटनोट यहाँ भी पढ़ लेते हैं। हमने देखा था ना कि जो सम्यक मिथ्यात्व के ऊपर अनंत स्पर्धक, अनंतर जो स्पर्धक है, वो अनंत गुणा जो है वो मिथ्यात्व का है, वही बात नीचे लिखते हैं। सव्वेसु देशघायिषु सम्मत्तम तदुवरिम तुवामिस्सम दारु समान साणंतिम दारु समानस अनंतिम उत्ति मिच्छत्तम उपीमो। यानी हमने देखा ना, अन्य देशघाती के समान जो आदि स्पर्धक है वैसा सम्यक्त्व का आदि स्पर्धक है, और उसके ऊपर अनंत जाने के बाद मिश्र का होता है। हमने देखा था अन्य जो ज्ञाना केवल ज्ञानावरण का जो देह सर्वघाती है उसके आदि स्पर्धक के समान सम्यक मिथ्यात्व का आदि स्पर्धक होता है, और उसके अनंत स्पर्धक जाने के बाद दारु समानस अंतिमोक्ति मिच्छत्तम उपिमो। ये दारु समान जो अंतिम जो है देशघाती का जो अंतिम है उसके ऊपर वाला स्पर्धक वो मिथ्यात्व का। अब नीचे की बात अभी हमने पढ़ ली नहीं है ऊपर, फिर भी पढ़ लेते हैं पहले में, पहले इसमें से ही फुटनोट में से। अनुभागो आकड्डिदोवी संकमो उक्कड्डिदोवी संकमो अन्नपैडेमिनिदोवी संकमो। क्या कहते हैं? अनुभाग का अपकर्षण करना भी संक्रमण है, उसका उत्कर्षण भी संक्रमण कहलाता है, और अन्य प्रकृति रूप होना भी संक्रमण कहलाता है। तत्थट्ठपयम उवाट्ठया व उवट्ठया व अविभागा अनुभाग संकमो एस अन्न पगयम निया वावी। वही बात इन्होंने गाथा के रूप में बताई है। अभी कौन से प्रति में क्या पाठ है वो आगे बताया है, अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ अर्थपद, अर्थपद यानी उसका नियम जो कुछ है, उसका लक्षण जो कुछ है, उसकी जो कोई बात है उसके पहले बताते हैं। अपकर्षण को प्राप्त हुआ भी अनुभाग, अनुभाग संक्रम है। अनुभाग चेंज होना ही अनुभाग संक्रम है ना, तो अपकर्षण होना यानी पहले अनुभाग ज्यादा था वो कम हो जाना। उत्कर्षण को प्राप्त हुआ भी अनुभाग, अनुभाग संक्रम है, यानी प्रकृति वही की वही है, अनुभाग घट गया बढ़ गया तो उसको हम कहेंगे संक्रमण हुआ। अन्य प्रकृति को प्राप्त कराया गया भी अनुभाग, अनुभाग संक्रम है। अब कहते हैं आदि स्पर्धकों का अपकर्षण नहीं होता, वो अपकर्षण होके कहाँ जाएंगे? हाँ 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 क्या क्या हाँ नीचे कुछ नहीं है कि अन्य समान हो जाएंगे, संक्रमण ने अन्य समान हो जाना। अभी वो तो अपूर्व स्पर्धक बनते हैं, कृष्टि बनते हैं, उसकी बात यहाँ नहीं की। आदि स्पर्धक से लेकर जितना जघन्य निक्षेप है इतने मात्र स्पर्धकों का भी अपकर्षण नहीं किया जाता। क्या कहना चाहते हैं? निक्षेप किसको कहते हैं? जिसमें डाला जाता है, जैसे हम ये निषेकों की अपेक्षा समझना बहुत आसान है। जैसे उदयावली में हम कहते हैं ना, उदयावली का नीचे का वंथड़ में निक्षेप होता है और फिर निक्षेप बढ़ता बढ़ता चला जाता है, और वहां अतिस्थापना वली भी अतिस्थापना भी होती है ना ऊपर, और नीचे निक्षेप होता है। तो यहाँ क्या कहा? यानी नीचे के कुछ, अब यहाँ स्पर्धकों की भाषा में कहना है, आदि स्पर्धक का तो अपकर्षण होगा ही नहीं, अनुभाग उसके घटकर अभी दूसरे वहां स्पर्धक ही नहीं ना, किसके समान हो जाएंगे? तो नीचे वाला जो स्पर्धक है उसका अपकर्षण नहीं होगा। ऊपर के नीचे के कुछ स्पर्धक, आदि स्पर्धक से लेकर कुछ स्पर्धक, उनका भी अपकर्षण नहीं होगा, ये बात यहाँ बता रहे। फिर पढ़ते देखो, मिनी भाग अनुभाग, फिर उससे ज्यादा उसका नहीं होगा। हाँ आते हैं, परंतु निषेक पहला निषेक का तो फिर जाता है ना, पहला निषेक का कहाँ उदीर्णा होती है? आप निषेकों के साथ स्पर्धकों को मत रखिए, स्पर्धकों को अलग रखना और निषेकों को अलग रखना। सत्ता में जहां कहीं भी स्पर्धक है उसका अनुभाग घटना, अब उदय में आना कि नहीं आना उसकी बात नहीं यहां पर। निषेक यानी वो स्थिति अपेक्षा रचना है, और उसमें जो अनंत स्पर्धक अनंत परमाणु है उसका अपना अपना अविभाग प्रतिच्छेद अलग अलग है। एक ही स्थिति में एक ही निषेक में अनुभाग के वेरिएशन बहुत सारे हैं। जहां कहीं भी हो उत्कृष्ट अनुभाग में से मंद अनुभाग होना, हाँ एक ही निषेक में लेना। प्रत्येक परमाणु का अपना अपना अनुभाग घटना, अनुभाग घटना उसका अनुभाग का अपकर्षण कहेंगे, स्थिति घटना उसको स्थिति का अपकर्षण कहा ना, निषेकों यानी उसमें निषेक ऊपर के निषेकों में से नीचे के निषेक में आए। वहां तो उदय के जल्दी आते हैं हम, उदय आने की अपेक्षा वहां लिया जाता है, यहां उदय की बात सोचो मत। अभी यहां हमको सोचने का तरीका अनुभाग की अपेक्षा ही सोचना, इसलिए इन्होंने जो पंक्तियां नीचे का किसको कहेंगे, जिसमें अनुभाग मिनिमम है उसको नीचे का कहेंगे, वो उदय की अपेक्षा कहां है उसकी बात यहां नहीं ली है। हाँ उसके साथ इसका भी कहीं कहीं मेल होगा, जहां वो जघन्य हम कहते बारहवें के अंत में उसका एक उदीर्णा होती है उस पोजीशन में वो जघन्य अनुभाग भी होगा वहां, उसकी बात अभी यहां नहीं सोचेंगे हम। अनुभाग का घटना ये अपकर्षण है, उसके साथ साथ स्थिति भी घट सकती है ना, तो वो स्थिति में बताएंगे अनुभाग में नहीं। अनुभाग में तो अनुभाग की ही सोचना है, बराबर है? हायर लिमिट नहीं दी है। कहते हो अभी आएंगे आएंगी बात। यहाँ तो क्या कहते हैं, पहले देख लिया अनुभाग कहाँ तक है, अनुभाग कब समाप्त होने वाला वो देख लिया। आदि स्पर्धक से लेकर यह मैं पढ़ रही हूँ, फिर जितना जघन्य निक्षेप है, निक्षेप है जिसमें अनुभाग घटकर जहाँ आएंगे उसको जघन्य निक्षेप कहेंगे, इतने मात्र स्पर्धकों का भी अपकर्षण नहीं किया जाता, यानी आदि स्पर्धक से लेकर कुछ स्पर्धकों का अपकर्षण नहीं होगा। निषेकों में सोचो मत, स्पर्धकों में सोचो, अभी उनसे ऊपर के स्पर्धक का भी अपकर्षण नहीं किया जाता क्योंकि अति स्थापना का अभाव है। इसलिए जितने जघन्य निक्षेप स्पर्धक है और जितने जघन्य अति स्थापना स्पर्धक है, इतने मात्र स्पर्धक प्रथम स्पर्धक से लेकर ऊपर चढ़कर जो स्पर्धक स्थित है उसका अपकर्षण किया जाता है, क्योंकि अतिस्थापना रूप व निक्षेप रूप स्पर्धकों की संभावना पाई जाती है। क्या कहना चाहते हैं, जघन्य स्पर्धक से लेकर, हमने देखा था ना ये जो गोले गोले हमने लिखे थे, जघन्य स्पर्धक से लेकर अपकर्षण की बात है, इसका तो अपकर्षण नहीं होता है, नीचे के कितने ही का अपकर्षण नहीं होता है, और ऊपर का भी अपकर्षण होगा वो नीचे आएंगे पर ये तो निक्षेप में चले जाएंगे, पर बीच में अतिस्थापना होगी। तो यहाँ कहते निक्षेप वाले और ऊपर के भी कुछ अतिस्थापना वाले, इनका भी अपकर्षण नहीं होता, तो आदि स्पर्धक से लेकर कितने ही स्पर्धक ऊपर जाके उनका यहाँ अपकर्षण हो सकता है। जघन्य निक्षेप प्लस अति स्थापना ऐड करके कितने ही स्पर्धक ऊपर जाने के बाद उसका अपकर्षण होगा, यानी उसका अनुभाग घटेगा। ये अभी हम आगे के पेज पर चले जाएंगे 376। यहाँ अल्प बहुत्व, अभी नया कुछ। हाँ अति स्थापना में अभी तो आवली तो नहीं कह सकते, अति स्थापना में विशिष्ट नंबर ऑफ स्पर्धक लेंगे, अपने अपने नीचे के नंबर ऑफ स्पर्धक छोड़कर उसके नीचे के स्पर्धकों में निक्षेप होगा। तो उसके अति स्थापना वली नहीं कह सकते, आवली तो निषेकों में लगेगी, इसके तो अति स्थापना और निक्षेप इतना ही कहेंगे। देखो ये नीचे जरा फुटनोट पहले पढ़ लेते, क्योंकि अभी जो हमने पढ़ा ना, अति स्थापना और निक्षेप का संभव है, उपलब्ध होता है, उसकी बात यहाँ पता है। ये फुटनोट में 376 पृष्ठ के ओकडनाय परुवना, अपकर्षण में प्ररूपणा करते हैं। पठम फद्यम नो ओकड इज्जति, पहला स्पर्धक का अपकर्षण नहीं होता। विधीय फद्यम नो ओकड इज्जति, दूसरे स्पर्धक का भी अपकर्षण नहीं होता। एवं अनंतानी न के ऊपर बिंदी दो, एवं अनंतानी फद्दयानी जहन्या अइच्छावना, तत्यानी फद्दयानी न उकडिज्जन्ति। यानी इस प्रकार अनंत स्पर्धक है वो जघन्य अति स्थापना है। जघन्य अति स्थापना भी कितनी हुई, जघन्य हो अनंत स्पर्धकों की हो, तो वहां तक के अपकर्षित नहीं होते। तत्यानी फद्यानी न उकडिज्जन्ति, ये हो पड़ा। अन्नानी अनंतानी फद्दयानी जहन्न निक्षेवम एतानी च न उकडिज्जन्ति। अन्य जो अनंत स्पर्धक है वो जघन्य निक्षेप है, वे भी अपकर्षित नहीं होते। जहन्नो निक्षेवो जहन्या इच्छावन्या च तत्तियम एतानी फद्दयानी आदिदो अदिच्छिदूण तदैत्थ फद्दयम उकडिज्जति। यानी जघन्य निक्षेप और जघन्य अति स्थापना है, इतने स्पर्धक आदि से लेकर वहां पर जो स्पर्धक स्थित है उसका अपकर्षण होता है। तेन परम सौवाणी फद्दयानी उकडिज्जन्ति, उसके ऊपर के सभी स्पर्धकों का अपकर्षण होता है। नीचे अनंता स्पर्धकों का अपकर्षण नहीं होगा और ऊपर के सभी स्पर्धकों का अपकर्षण होगा, इतनी बात यहाँ बताइए। अब आगे पढ़ेंगे। यहाँ अल्प बहुत्व, प्रदेश गुणहानि स्थानांतर स्तोक है, जघन्य निक्षेप अनंत गुणा है। देखो प्रदेश गुणहानि स्थानांतर यानी गुणहानि समझना। तो यहाँ प्रदेशों की गुणहानि कैसे संभव है, गुणहानि यानी गुणित प्रमाणे हानि, हम कहते हैं आधा हुआ उसका आधा हुआ उसका आधा हुआ उसका आधा हुआ, तो यहाँ तो ये बातें बताई नहीं है। परंतु हम देखते हैं स्पर्धक क्या होता है, एक स्पर्धक में अनंत वर्गणा होती है, बराबर है। जघन्य वर्गणा यानी पहली वर्गणा, उसमें अनुभाग सबसे हीन है। दूसरी वर्गणा में अनुभाग कितना है, चाहिए नहीं, एक अविभाग प्रतिच्छेद से ज्यादा है। हमने यहां 100 समझना तो वहां 101 होगा, परंतु प्रदेश उसमें कम है, प्रदेश चय से कम है, प्रदेश में चय लगा नहीं, समझे। अभी स्पर्धकों की बात है, यहां निषेक की बात नहीं है। ये सब पूरा एक स्पर्धक मिलकर उसमें क्या क्या होता है तो हम आड़ी रेखा में समझा रहे हैं, परंतु यहाँ निषेक से कोई संबंध नहीं है। एक स्पर्धक में क्या होता है, अनंत वर्गणाएं होती है। यानी ये स्पर्धक है पहली से लेकर यहाँ कुछ यहाँ तक तो वो वर्गणाएं होती है, ऊपर का जो बहुभाग है वो गैप है, फिर यहाँ से दूसरा स्पर्धक शुरू होता है पहले स्पर्धक की पहली वर्गणा से, दूसरे स्पर्धक के पहली वर्गणा में अविभाग प्रतिच्छेद डबल हो जाता है, यहाँ 100 है तो यहाँ 200 हो जाएगा। तो इसकी वर्गणा कैसी समझना, यहाँ वर्गणाएं है ही नहीं, फिर भी उसका प्रदेशों की संख्या हम ऐसे ऊपर से ऊपर तक एक एक से ले लेंगे, वहाँ है प्रदेश ऐसा समझकर उसकी वर्गणा उसके प्रदेश हम गिनेंगे। तो यहाँ कहते हैं पहला जो पहली वर्गणा है उसमें अविभाग प्रतिच्छेद हमने 100 माना है, दूसरी में 101 होगा, तीसरी में 102, 3, 4, 5 इस तरह से, हाँ अभी 140 तक है, फिर 200 से लेकर हम दूसरा स्पर्धक गिनेंगे। तो पहला जो पहली वर्गणा है उसमें प्रदेशों की संख्या मैक्सिमम है, जैसे हम निषेकों में देखते थे पहला निषेक 512 का, फिर ऊपर से एक एक छह घटता था, वैसे प्रति वर्गणा एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ता है, परंतु परमाणु की संख्या एक एक छह से घटती है। आदि स्पर्धक के आदि वर्गणा में जितने परमाणु है मैक्सिमम, आदि स्पर्धक के दूसरी वर्गणा में प्रदेश कम है, तीसरी में प्रदेश और कम है, चौथी में प्रदेश और कम है, अनुभाग एक एक से बढ़ता है। तो हमने कहा दूसरे स्पर्धक में अनुभाग डबल हुआ, तीसरे में 3 गुना हुआ, चौथे में 4 गुना हुआ, इस तरह से अनेक स्पर्धक जाने के बाद प्रदेशों की संख्या आधी हो गई, डबल नहीं, अनुभाग तो अनंत गुना बढ़ेगा। अनुभाग डबल तो दूसरे ही स्पर्धक में हुआ है, परंतु प्रदेश आधे होना कि कितने ही स्पर्धकों के बाद प्रदेश आधे हो जाएंगे, यानी क्या कहा हमने, नहीं अनंत वर्गणाओं का एक स्पर्धक और अनंत स्पर्धकों की एक गुणहानि हो जाएगी, ख्याल में आता है। प्रदेश आधे हुए, अनुभाग तो कितने अनंत गुना बढ़ गया, तो एक गुणहानि में नंबर ऑफ स्पर्धक कितने हैं उसको प्रदेश गुणहानि स्थानांतर कहा। तो गुणहानि कैसे, गुणहानि तो प्रदेशों की संख्या से लेना है, एक एक स्पर्धक काहे से बनाए, अनुभाग बताते, पर अनुभाग तो परमाणुओं के आधार से हम गिनेंगे ना, फिर से एक एक कर्म परमाणु में अनुभाग है विशिष्ट, इसलिए कर्म परमाणु को वर्ग कहने में आता है, जिसमें जिसमें समान अनुभाग है ऐसे वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। जब हमने अभी 100 अनुभाग मान लिया है तो जो वर्गणा है जिसमें अनंत परमाणु है उसमें प्रत्येक परमाणु में 100 अविभाग है। दूसरी वर्गणा है उसके जितने परमाणु है उसमें 101 अविभाग है, यानी वर्गों के समूह को वर्गणा कहा, वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहा, और जहां पहले स्पर्धक के पहले वर्गणा से उसमें जितने परमाणु है उन परमाणुओं की संख्या जिस स्पर्धक के पहले वर्गणा में आधे होते हैं वहां से दूसरी गुणहानि चालू हो जाती है, यानी अनंत वर्गों के समूह को वर्गणा कहा, वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहा, और स्पर्धकों के समूह को गुणहानि कहा जहां प्रदेश आधे हो जाते हैं। ये तो यहाँ कुछ लिखा नहीं है अभी हमने सम्यक ज्ञान चंद्रिका में जो कुछ पढ़ा है उसके आधार से बता रहे हूँ, ख्याल है ना इसको। देखो यहाँ प्रदेश गुणहानि स्थानांतर का गुणहानि नाम यहाँ भी आता है और गुणहानि नाम वहां निषेक रचना भी आता है, फिर से हाँ एक स्पर्धक में गुणहानि किसको कहना, ये अनुभाग की गुणहानि कहलाएगी, आधी हो जाती है, हाँ एक गुणहानि स्थानांतर कहो या एक गुणहानि आयाम कहो एक ही बात है, आयाम किसमें गिनेंगे, यहाँ समयों में नहीं गिनना है, नहीं स्पर्धकों की संख्या में। गुणहानि कब कहेंगे, प्रदेशों की संख्या आधी होती है तब गुणहानि कहेंगे, गुणहानि स्थानांतर हाँ आधे होते परंतु वो किसमें गिनेंगे, स्पर्धकों की संख्या में, कितने स्पर्धक जाने के बाद गुनहानी होती है उसको कहेंगे ना। हम निषेकों में कैसे गिनते थे, देखो यह है निषेक रचना और यह है अनुभाग रचना। निषेक रचना में निषेक मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, असंख्यात। कितने ही वो कोड़ा कोड़ी सागर भी क्यों न ले, 70 भी क्यों न ले, वो असंख्यात है। और ये स्पर्धक कितने होते, अनंत होते हैं। हाँ, नहीं नहीं उसी गैप की बात छोड़ दो, स्पर्धक अनंत है बराबर। अब यहाँ जो है, यहाँ गुणहानी किसको कहते हैं, जैसे हमने 512 पहले लिया था और जो 256 हो जाता है तो गुणहानि हुई। उसमें क्या लिखा कि निषेक में कितने परमाणु है जो आधे होते हैं, तब उसको गुणहानि कहा। अब यहाँ क्या लेना है, यहाँ तो स्पर्धक है और एक एक स्पर्धक में अनंत वर्गणा है और एक एक वर्गणा में अनंत परमाणु है। तो पहले स्पर्धक के पहले वर्गणा के जितने परमाणु है, अविभाग प्रतिच्छेद ऊपर ऊपर बढ़ता चला जाता है, परमाणुओं की संख्या क्रम से घटती है, जहां जाकर उसके परमाणु आधे हो जाएंगे उसको गुणहानि स्थानांतर कहेंगे। यह अनंत में होता है। यहां तो हम कहेंगे ना पल्ले के असंख्यात विभाग इतने कहेंगे, निषेक में क्या कहेंगे, पल्ले के असंख्यात विभाग इतना वो गुणहानि का आयाम है। अब यहां कहेंगे अनंत है, क्योंकि गुणा एक एक स्पर्धक के प्रति भी अनंत अनंत वर्गणा होती है, तो इसमें अनंत स्पर्धक होते हैं एक गुणहानि में, एक स्पर्धक में अनंत वर्गणा होती है और एक वर्गणा में अनंत परमाणु होते हैं, वर्ग होते हैं। अभी ख्याल में आई ये बात, जब गुणहानि कहते हैं तो अनुभाग की गुणहानि अलग है और निषेकों की गुणहानि अलग है। इसको उदय रूप में कोई संबंध नहीं लगाना, अभी नहीं लग, किस रूप से उदय है वो तो उसके बाद अनुभाग उदय में आएगी, वो तो भाग हमने पढ़ा था, अनुभाग उदय का अपना प्रकरण हुआ था, उदय अब अनुयोग द्वारा अपना हुआ ना 15वीं पुस्तक में, अनुभाग का कहाँ उदय होता है, जघन्य कहाँ उत्कृष्ट होता है, उसकी बात आ गई थी। तो उदय रूप निषेक में जो अनुभाग होगा उसको हम अनुभाग उदय कहेंगे। अब यहाँ अनुभाग की रचना कैसी कैसी हो रही है उसकी बात अभी पहले हम सीख रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं नंबर ऑफ गुणहानियां स्तोक है, अल्प बहुत वो बता रहे हैं। नहीं नहीं गुणहानि का आयाम, सॉरी अनंत स्पर्धक, एक गुणहानि में स्पर्धकों की संख्या है अनंत, वो छोटी है। गुणहानि स्थानांतरण यानी गुणहानि का आयाम, जघन्य निक्षेप अनंत गुणा है, जघन्य उससे भी जघन्य निक्षेप अनंत गुणा है। जघन्य निक्षेप में भी कितनी गुणहानियां हो जाएगी, गुणहानी अनंत हो जाएगी उसमें जघन्य निक्षेप में। जिसमें डाला जाता है और जिसमें नहीं डाला जाता उसको कहेंगे अतिस्थापना, अनंत गुणा है, गुणहानि से भी वो अनंत गुणा है। अब कहते जघन्य अतिस्थापना उससे भी अनंत गुणी है, जिसमें डाला नहीं जाता। हम देखें अतिस्थापने बीच में छोड़कर अभी ऊपर के जो स्पर्धक है, ऊपर के स्पर्धकों में से नीचे के स्पर्धकों में सर्वत्र डाला जाता है, बीच में कितने ही स्पर्धकों में, अपने अपने नीचे के कितने स्पर्धकों में नहीं डाला जाता है उसको लांग कर नीचे के स्पर्धकों में डाला जाता है। तो मान लेते हैं हम नीचे से शुरू करते हैं, सबसे पहले में पहले कहां से अपकर्षण होगा, तो नीचे के अनंत में से अपकर्षण होता ही नहीं है, तो उसमें किस किस को लेना, जघन्य निक्षेप प्लस जघन्य अति स्थापना को लेकर यहाँ का नीचे आया, तो नीचे कितने में आया, मान लेते 2-3 स्पर्धक में आया, तो ये जघन्य निक्षेप कहलाएगा, और यहाँ जो बीच में जाती है वो तो अति स्थापना कहलाएगी। हाँ वैसा वो उदय, परंतु वहाँ निशे को में लेना, यहाँ स्पर्ध को में लेना। अभी ऊपर चले जाते तो निक्षेप बढ़ता, ये निक्षेप उतना ही ले हो रहेगा, अति स्थापना जो कोई पॉसिबल है उतनी हो जाएगी, फिर निक्षेप भी बढ़ता चला जाएगा। तो बाद में रेगुलर में क्या होगा, किसी भी स्पर्धक में से अपकर्षण होता है तो नीचे के कितने ही स्पर्धक छोड़कर उसके नीचे सर्वत्र अपकर्षण होकर उसके परमाणु, उसका अनुभाग घटकर नीचे के स्पर्धकों में आ मिलते हैं। वहाँ अवली लेते हैं। अब यहाँ जो कोई यथा योग्य उत्कृष्ट होगा उसको उत्कृष्ट में ले लेना। हाँ वहाँ हमने 6 लिए थे, वो जगन ने लिए। हाँ 7 से 16 जो जगन ने अति स्थापना, अति स्थापना बढ़ती गई फिर 16 तक, नहीं 6 में होता था, 5+1 में 6 में होता था, नीचे के 6, 16 माइनस 1 15 हुए, उसका 2/3 छोड़ना नीचे के 16 में हुआ, फिर वो एक समय फिर मिलाया था उसमें 5 में 6 में होता है वहाँ 7 से 16। हाँ जघन्य अति स्थापना, हाँ जो 16 समय वो आवली में जो लिया था हमने, निशे को में लिया था। अब यहाँ वो कंपेयर के दृष्टांत के लिए, ये अनंत में हाँ वो तो समयों में और आवली में गिने थे हमने, क्योंकि एक एक समय में एक एक निषेक था। अब यहाँ हमको अनुभागों में गिनना है, तो निक्षेप भी अनंत, उसे अनंत गुणा वो अति स्थापना, वो जघन्य भी उसे अनंत गुणा, जघन्य अति स्थापना से उत्कृष्ट अति स्थापना अनंत गुणी। फिर उत्कृष्ट अनुभाग कांडक विशेष अधिक है, क्या कहना चाहते हैं ये आपको? स्थिति कांडक तो याद होगा, जब स्थिति घटती है तो बड़ा एक कांडक करके वो नीचे के सस में आ जाते हैं, तो यहाँ उत्कृष्ट अनुभाग कांडक लिया। देखो जब हाँ बड़े बड़े में बड़ा अनुभाग कांडक हमने देखा था, प्रायोगिक लब्धि में जीव आता है तो एक ही बड़ा स्थिति कांडक होता है, एक ही बड़ा अनुभाग कांडक होता है, और स्थिति तो अंत कोड़ाकोड़ी हो जाती है और अनुभाग भी यथायोग्य घटता है। तो वहाँ जो कोई बड़ा अनुभाग कांडक हो, अभी हर एक में अलग अलग लगाना जो कुछ है, तो उसको उत्कृष्ट में उत्कृष्ट अनुभाग कांडक कितना होगा, कितने स्पर्धकों के, वो तो अंतर्मूर्त में सभी स्पर्धक ही नष्ट हो जाए ना। कांडक किसको कहते हैं? ये रेगुलर होता है तो अपकर्षण कहेंगे, ये ऊपर के सभी स्पर्धक नष्ट होकर उसके परमाणु नीचे के स्पर्धक जैसे बन जाएंगे, उसको अनुभाग कांडक कहेंगे। तो कितने स्पर्धकों में से इन्हें नष्ट हो गए, कितने स्पर्धक एक अंतर्मूर्त में वो हो जाएगा, तो उसको कहेंगे अनुभाग कांडक, नष्ट हो जाता है, स्थितियां नष्ट होती है। अनुभाग कांडक में स्पर्धक नष्ट हो जाएंगे, कांडक घात जब कहते हैं उसका पूरा घात ही हो जाता है। और रेगुलर जो अपकर्षण में यानी नष्ट होते ने उस अनुभाग वाले स्पर्धक ही नहीं रहेंगे, अपकर्षण में थोड़े परमाणु नीचे के सदृश हो जाते हैं, और कांडक घात में पूरे के पूरे वहां नष्ट हो जाते हैं ऊपर की अधिक अनुभाग वाले। ये अप्रशस्त में होगा हो हाँ नहीं तो अपने सारे पुण्य का बेकार चले जाएगी ना हमको चिंता काहे की है बहुत मेहनत से इतना कमाया है आप कहते हैं उत्कृष्ट अनुभाग कांडक विशेष, उत्कृष्ट निक्षेप विशेष अधिक है नेचुरली, क्योंकि हमने देखा था ना अभी ऊपर ऊपर के अनुभाग जो स्पर्धक है उसमें से वो अति स्थापना छोड़कर नीचे सर्वत्र निक्षेप किया जाएगा, तो उत्कृष्ट निक्षेप उसको कहेंगे विशेष अधिक, क्योंकि अपकर्षण की अपेक्षा अंतिम स्पर्धक का जो अति स्थापना रूप स्पर्धक है और जिसका निक्षेप हुआ है, मात्र इन दोनों का अभाव है। क्या कहते हैं? अंतिम अति स्थापना रूप जो स्पर्धक है, सॉरी अंतिम स्पर्धक है, अंतिम स्पर्धक का निक्षेप कहाँ कहाँ हुआ है? अभी इसका निक्षेप इसी में तो नहीं कहलाएगा, इसको छोड़ो, और अतिस्थापना रूप जो कोई वहाँ निक्षेप है, सॉरी स्पर्धक है, उसको छोड़ो। इसको छोड़कर नीचे सर्वत्र निक्षेप होगा, ये उत्कृष्ट निक्षेप कहलाएगा। उत्कृष्ट निक्षेप किसमें से होगा? ऊपर के स्पर्धक में से। ऊपर के स्पर्धक में से आए तो उसको भी छोड़ दिया, पूरे जघन्य से उत्कृष्ट तक जितने अनुभाग की रचना थी उसमें टॉप मोस्ट जो स्पर्धक है उसमें से अति स्थापना छोड़कर नीचे सर्वत्र आते हैं परमाणु, तो उसको उत्कृष्ट निक्षेप कहेंगे। हाँ, वो कांडक की अपेक्षा, जब अनुभाग कांडक होता है ना, बड़ा में बड़ा, तो अनंत बहुभाग का कांडक होकर अनंत विभाग मात्र हो जाता है। अनुभाग कांडक सबसे बड़ा होता है ना, ये अनुभाग कांडक में क्या क्या होता है? अनंत बहुभाग घटकर अनंत विभाग, अनंत विभाग ऐसा होता है, फिर उसका अनंत बहुभाग घटेगा नेक्स्ट अनुभाग कांडक घात में, और ऐसे एक स्थिति कांडक घात में हमने देखा था हजारों अनुभाग कांडक घात होते हैं, और हर एक के लिए अपना अपना अंतर्मुहूर्त लगता है। मात्र इन दोनों का अभाव है, इसीलिए अंतिम स्पर्धक के जघन्य निक्षेप और जघन्य अतिस्थापना को छोड़कर जो स्पर्धक स्थित है उसका अपकर्षण किया जाता है। अपकर्षण किस किस का किया जाता है उसकी बात है। अपकर्षण किसमें से होता है, वहां तो उत्कृष्ट निक्षेप की बात बताई, किसमें से अपकर्षण किया जाता है, तो नीचे से कहां से लेकर अपकर्षण शुरू हुआ था? जघन्य निक्षेप और जघन्य अति स्थापना को छोड़कर वहां से लेकर अपकर्षण होना शुरू हुआ था। वहां से लेकर कहां तक चले जाना? ऊपर अंतिम स्पर्धक तक। इनमें से तो अपकर्षण होगा, ये इसलिए वाली जो बात है ऊपर नहीं लिखी थी ना, अब पढ़ेंगे नीचे। जघन्य निक्षेप और जघन्य अति स्थापना को छोड़कर जो स्पर्धक स्थित है उसका अपकर्षण किया जाता है। नहीं, निक्षेप में तो परमाणु आते हैं, अति स्थापना में परमाणु नहीं आते। जैसे नीचे की ओर से हमने देखा था, कहां से अपकर्षण शुरू किया था? नीचे का निक्षेप छोड़ो और नीचे के अति स्थापना छोड़ो, जैसे हमने उदयावली को छोड़ा था। 17वें निषेक के परमाणु कहां? नीचे के 6 में जाते थे ना, वो निक्षेप हुआ, और ऊपर के 10 में नहीं जाते थे, वो अति स्थापना मिनिमम थी। 18वें में से कहां गए? वही नीचे के 6 में गए थे, और बीच की अति स्थापना बढ़ती गई थी, वो निषेकों में हमने कंपेयर किया था। वो निषेकों में से अपकर्षण कहां कहां से होगा? 17वें समय से लेकर कर्म की अंतिम स्थिति, उस सब में से अपकर्षण होगा। परंतु उत्कृष्ट निक्षेप वहां कब किसको कहेंगे? अंतिम जो निषेक है उसमें से ऊपर की एक आवली छोड़कर नीचे सर्वत्र उसका निक्षेप होता है, उसको उत्कृष्ट निक्षेप कहने में आए। वैसे अनुभाग में समझ लेना, ये दो स्टेटमेंट्स अलग है, परंतु उसको इसीलिए कहा। क्या कहे? अंतिम स्पर्धक से लेकर, अंतिम स्पर्धक से बाद कॉमा लगाना, जघन्य निक्षेप और जघन्य अति स्थापना छोड़कर जो स्पर्धक स्थित है उसका अपकर्षण किया जाता है। यानी अपकर्षण कितने में से किया जाता है? अंतिम स्पर्धक से भी किया जाएगा, और नीचे कहां तक के स्पर्धकों में से अपकर्षण होगा? तो हमने देखा था ना, हाँ, ये जघन्य अति स्थापना और जघन्य निक्षेप को छोड़कर जो ऊपर स्थित था, हाँ, सभी में से अपकर्षण होता है। यहां से लेकर यहाँ कितने में से होता है वो बताया, और कितने में निक्षेप होता है मैक्सिमम, तो ऊपर का स्पर्धक और ऊपर की अति स्थापना छोड़कर वो ऊपर के स्पर्धक में से नीचे सर्वत्र आता है। ये इसलिए के बाद जो है ना, उसका अपकर्षण किया जाता है। ये अपकर्षण कितने में से किया जाता है उसका स्टेटमेंट है। तदो यानी इसलिए, तदो जहन्यम निक्षेप जघन्य अति स्थापना उपस्थितं जम पदम चरम, उसका अर्थ इसलिए नहीं होता है, अंतिम स्पर्धक से, ये इसलिए शब्द वहां नहीं लिया लेना था। तदो यानी वहां से, हाँ इसलिए निकाल देना, वो पेंसिल से निकालो। अंतिम स्पर्धक से कहाँ कहाँ से निक्षेप होता है उसकी बात है ना, अंतिम स्पर्धक से लिखा है ना, इसलिए निकाल देना, कुछ नहीं लिखना। अंतिम स्पर्धक से जघन्य निक्षेप और जघन्य अति स्थापना छोड़कर जो स्पर्धक स्थित है उसका अपकर्षण किया जाता है। यही रुकेंगे अभी समय, दोबारा लेंगे। अच्छा, हाँ, अल्प बहुत वैसे न कहाँ से, अर्थपद से फिर ले लेंगे, यहाँ हम मार्क लिखते हैं, आपको याद देना ना कहाँ से हमको लेना है, थोड़े रिवीजन करके बढ़ेंगे ना आज, हाँ, आज और कल ज्यादा लोग भी आएंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। अश्विन भाई।